मेरे अजीज साथियों नमस्कार। आज 26 अप्रैल 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले कि मैं अपने कल के विषय को आगे बढ़ाऊं, एक दो बातें आप सबसे कहना चाहता हूं। पहला तो यह कि इससे कुछ एपिसोड पहले जिसमें मैंने स्वाभिमान और ईगो के बारे में आप लोगों से बातें की थी, उस पर आप में से कई मेरे प्रिय श्रोताओं की मुझे प्रतिक्रियाएं मिली हैं और खासकर प्रतिक्रियाएं इस रूप में हैं कि स्वाभिमान क्या होता है और ईगो क्या होता है। दोस्तों, ये प्रतिक्रिया भेजने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सच पूछिए तो प्रशंसा करता हूं। प्रशंसा इस बात के लिए करता हूं कि अंततः आप लोगों ने उस पर सोचा ही नहीं बल्कि जो कुछ भी आपकी समझ में आया, आपके दिमाग ने आपके हाथ में निष्कर्ष थमाया, वह सब आपने मुझे प्रेषित भी किया। डेफिनेटली देखिए, विकास की गाथाएं तो इसी तरह से बनती हैं और लिखी भी जाती हैं जब हम कोशिश करें तो। लेकिन एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा मित्रों कि आप लोगों ने जो कुछ भी अभी भेजा है मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है, क्योंकि इस विषय पर मेरी भी बहुत रुचि है कि मैं कोई सही निष्कर्ष पा सकूं, सही मंजिल तक पहुंच सकूं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो बातें आप लोगों ने लिखी हैं, सच पूछिए तो वो वही बातें हर कोई कहता है। जो भी स्वाभिमान और ईगो के बारे में कहता है, ये यही बातें कही जाती हैं सामान्य तौर पर, और चूंकि हमने भी यही बातें सुनी हुई हैं तो इसीलिए हमारे दिमाग में भी वही चीजें बैठी हुई हैं। हमारा दिमाग भी ओरिजिनल कितना सोच पाता है, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमने जो सुना है उसी को उलट पलट कर ज्यादातर मामलों में हम सब उसी को ही व्यक्त करते हैं अपनी भाषा में, अपने अंदाज में, उसमें थोड़े अपने अनुभवों को शामिल कर लेते हैं, उसकी थोड़ी सी भाषा बदल जाती है, लेकिन बातें लगभग लगभग वही होती हैं। और स्वाभिमान और ईगो के बारे में मुझे जो भी प्रतिक्रियाएं मिली हैं वो लगभग लगभग इसी प्रकार की हैं। इसलिए मित्रों, मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और खासकर उनसे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, क्योंकि उन्होंने इस पर कम से कम सोचना तो शुरू किया है, और थोड़े से डेप्थ में जाएं। आपने जो निष्कर्ष निकाले हैं उस पर थोड़े से और विचार, उसके विरोधी तत्वों को लेकर के आए, उस पर विचार करें, उसकी और थोड़ी सी खोदाखादी करें, खूब मथें और फिर देखें कि वो टिक पाता है या नहीं टिक पाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया था, आपको ध्यान होगा, बॉस का उदाहरण दिया था, राइट? तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप सब और सोचें, बातचीत करें। मित्रों, एक दूसरी बात है कि कल मैं भागम दौड़ पर बात कर रहा था, भागम भाग। आप लोगों को लग रहा होगा कि भागम भाग का क्या संबंध टाइम मैनेजमेंट से है। देखिए, सीधी सी बात है कि भागम भाग शब्द का आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि जो जिन चीजों के लिए भी आप भाग रहे हैं, अभी उसके लिए 24 घंटे का वक्त है, इसी के लिए अगर आपको 32 घंटे दे दिए जाएं तो देखेंगे कि भागम भाग थम जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात अलग है कि अगर ऐसा कर लिया गया तो हम सब अपनी भागम भाग के लिए और कुछ नई चीजें ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे। भागम भाग से हम मुक्ति नहीं पाना चाहते, इनफैक्ट सच बात यह है। तो भागम भाग का सीधा संबंध समय से है, इस पर आप यकीन करके चलिए, आगे हम सब उसे देखेंगे। लेकिन मैं शुरुआत जानबूझ करके यहीं से करना चाहूंगा और इसलिए भी मैंने की है क्योंकि कुछ मेरे प्रिय श्रोताओं ने भागम भाग वाली जिंदगी के संदर्भ में ही टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहा था। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने सही में अपने भागम भाग के बारे में पूरी निर्ममता के साथ, पूरी तटस्थता के साथ विचार किया होगा। सच पूछिए, ईमानदारी के साथ अगर हम अपने मन की गहराइयों में उतरे, अवचेतन मन तक पहुंचे, तो दोस्तों हम भागम भाग से मुक्त नहीं होना चाहते। इसीलिए हम इसको रिव्यू भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि नहीं, मैं जो ये कहता हूं कि मेरे साथ बहुत भागम भाग है, इसी को दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि मेरे पास बड़ी व्यस्तता है, मैं बहुत बिजी रहता हूं, मैं ये कहते रहना चाहता हूं। अगर मैं ये कहूंगा कि मैं फुर्सतिया हूं, मैं बैठा हुआ हूं, व्यस्त नहीं हूं, खाली हूं, तब तो मेरी वक्त ही क्या रह जाएगी, लोग मुझे क्या समझेंगे। तो भले ही सच्चाई जो भी हो, लेकिन दूसरों के सामने तो मैं अपनी वक्त दिखाना चाहता ही हूं। वहां मैं कोई मार्जिन नहीं देना चाहता, वहां मेरे सामने सच झूठ नैतिकता अनैतिकता पाप पुण्य का कोई विभेद नहीं है, मैं जो चाहता हूं वही सत्य है और मैं जो करता हूं वही पाप वही पुण्य है। इस रूप में मैं उन चीजों को सामने प्रस्तुत करता हूं, इसलिए मैं उसको रिव्यू ही नहीं करना चाहता। सच पूछिए तो कभी कभी बहुत विचित्र सी स्थिति होती है कि हमें अपने ही दुखों से अपनी ही परेशानियों से प्रेम हो जाता है, और मुझे लगता है कि ये भागम भाग कुछ इसी तरह के दुख और परेशानी है जिससे हमें प्रेम हो गया है और हम इससे छुटकारा पाना नहीं चाहते। अदरवाइज फिर से मेरा एक सवाल है मित्रों, और थोड़ा सा तीखा सवाल ही है, और वो ये, अगर आप इसे मान लीजिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैंने आपको एक छोटा सा उपाय बताया है कि थोड़ा सा रिव्यू तो कीजिए, और यदि आपने इसे नहीं किया है तो सीधा सा मतलब है कि आप इसे छुटकारा पाना नहीं चाहते, बातचीत इस पर जरूर करना चाहते हैं या इस पर बातचीत सुनना चाहते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए तो कम से कम राहत मिल ही जाती है और फिर हम उसी में खो जाते हैं, तो उससे दोस्तों बात बनेगी नहीं क्योंकि ये जो भागम भाग है इसी का एक लिटरेरी वर्ड कह लीजिए, एक साहित्यिक स्वरूप या सभ्य समाज में बोला जाने वाला शब्द है व्यस्तता, कि मैं बहुत व्यस्त हूं। मित्रों अब मैं आपको व्यस्तता के दो उदाहरण दे रहा हूं और इसे आप बिल्कुल भागम भाग से ही जोड़ लीजिएगा, और ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं याद रखिए ये किस्से कहानी नहीं है, ये पंचतंत्र की कथाएं नहीं है और न किसी साहित्यकार के द्वारा लिखी गई लघु कथाएं हैं, ये जीवन की सच्चाई है और विश्वास कीजिए कि इसमें एक भी शब्द तो मेरा अपना हो सकता है लेकिन जो घटना है या घटना का जो कलर है वो मेरा नहीं है, उसको मैंने ज्यों की त्यों रखने की कोशिश की है। तो आइए अब इस व्यस्तता की सच्चाई को जानते हैं। फिर से मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं ताकि हम सब जब अपने को रिव्यू करें तो शायद इन उदाहरणों से कोई रास्ता दिखाई दे जाए। मित्रों ये बात लगभग करीब 15-20 साल पहले की बात रही होगी, नहीं 20 साल पहले की तो नहीं, मैं समझता हूं 12-13 साल पहले की ये बात रही होगी। हम लोग कहीं गए थे, मैं मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम लोग घूमने गए थे, तो हम लोग जहां हमें रुकना था वो हमारे एक परिचित का घर था और उनका आग्रह था कि हम उनके ही घर पर रुकें, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जिस दिन हम लोगों को पहुंचना था उसके सुबह ही उन लोगों को कहीं जाना पड़ गया, तो उनका घर बंद हो गया लेकिन वो चाबी पड़ोस में दे करके चले गए और आग्रह था कि हम वहीं आकर के रुकें, नेक्स्ट डे वो लोग वापस आ जाएंगे। हम लोग शाम को पहुंचे, आग्रह ठुकराना बड़ा मुश्किल होता है और हमारे बड़े प्रिय भी हैं वो, तो हम लोग वहां रुके। रात में जब मेरी पत्नी किचन में पहुंची कि अब खाना वगैरह बनाया जाए कुछ तैयार किया जाए, तो किचन में पहुंचने के बाद वो देख रही है कि किचन बहुत अस्त व्यस्त है, मतलब ये कह लीजिए कि कहीं कोई चीज फैली हुई, चिमटा नहीं मिल रहा है, चकला नहीं मिल रहा है, बेलन नहीं मिल रही है, कुछ वहां पड़ा है, तो इस तरीके से चीजें बिखरी हुई थी। तो मेरी पत्नी ने फिर आकर के मुझसे कहा कि जो भी उस घर में रहती थी, मतलब उसकी जो मालकिन थी कह लीजिए, हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करें, कि वो बहुत बहुत व्यस्त रहती हैं, देखिए कि कोई चीज यहां पड़ी है कोई चीज वहां पड़ी है, व्यस्तता के कारण ऐसा सब हो रहा है। तो मैंने अपनी पत्नी से बहुत विनम्रता और बड़े संकोच के साथ कहा, क्योंकि ये एक तरीके की आलोचना भी होती है और मित्रों आलोचना कितनी भी सही क्यों न हो, मुझे मालूम है कि सुनना कोई पसंद नहीं करता, और प्रशंसा कितनी भी झूठी क्यों न हो हम सुनना चाहते हैं, ये तो मुझे मालूम है, मालूम था भी। फिर मैंने संकोच से कहा कि जरा आप सोचिए कि इस मेरी बात पर विचार कीजिए कि जिसके बारे में आप कह रही हैं कि वो कितनी व्यस्त है, वो वाकई में व्यस्त है या अस्त व्यस्त है, सोच करके देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अस्त व्यस्त है। मित्रों ये व्यस्तता का एक छोटा सा उदाहरण है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। यहां मैंने जो अस्त व्यस्तता की बात कही, आप कल्पना करके देखिए कि जो व्यक्ति व्यस्त होगा, पहली बात वो इतना अव्यवस्थित रहना कैसे स्वीकार कर सकता है, वो इतना अव्यवस्थित रह ही नहीं सकता, और अगर वो इतना अव्यवस्थित ही है तो सीधी सी बात है कि उसकी व्यस्तता तो है लेकिन फालतू की व्यस्तता है, चीजें बिखरी हुई है बस उनको समेटने में वो व्यस्त है, कुछ बहुत रचनात्मक काम नहीं हो रहा है जिसकी वजह से हम कहें कि वो व्यस्त है। इस व्यस्तता को तो खत्म किया जा सकता है, चीजों को व्यवस्थित कर दीजिए, व्यस्तता खत्म हो जाएगी और आप व्यवस्थित हो जाएंगे, व्यस्तता खत्म, व्यवस्थित का आगमन, बात खत्म। यहां भी आपको टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा सूत्र दिखाई देगा कि हम सब अपनी अपनी व्यस्तताओं के बारे में विचार करें और देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि हम व्यस्त कम हैं, अस्त व्यस्त ज्यादा हैं, या यूं कह लीजिए कि चूंकि अस्त व्यस्त हैं इसीलिए व्यस्त हैं। दोस्तों ये मैंने एक उदाहरण दिया। एक दूसरा छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक और उदाहरण। दोस्तों ये सब सन 2002-3 के आसपास की बात होगी। मेरे पास उस समय काफी स्टूडेंट आते थे, मैं उन्हें गाइड करता था सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, कैरियर के लिए। तो वो स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने बात की कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहा हूं। चलिए मैं इस उदाहरण की जगह मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। मेरे पास मित्रों एक स्टूडेंट का पत्र आया, मैं ये वाला उदाहरण ज्यादा अच्छा ज्यादा सटीक है। मेरे पास एक स्टूडेंट का पत्र आया, उस समय लेटर का जमाना था, खूब लेटर्स आते थे मेरे पास। आज भी वो म्यूजियम की तरह रखे हुए, करीब मेरे पास यंग स्टूडेंट्स के लिखे हुए 10,000 लेटर्स तो अभी मैं उन्हें संभाल कर रखा हुआ हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब वो देखने में को नहीं मिलेंगे। तो लेटर आया और उसमें उन्होंने लिखा कि सर मैं बेरोजगार हूं और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और अगर आप मेरे लिए कुछ इंतजाम कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। पत्र मुझे मिला और मैंने उस पत्र का जवाब दे दिया, जो भी जवाब दिया उससे ज्यादा मायने नहीं रखता है। इसके बाद मित्रों फिर 2 महीने बाद उसी स्टूडेंट का मेरे पास फिर लेटर आया, उसी का सेम का। वो स्टूडेंट नहीं, नौजवान रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं है कि वो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था या नहीं कर रहा था, या पढ़ाई कर ही चुका था, पूरी हो चुकी थी। इसके बाद 2 महीने के बाद मेरे पास फिर लेटर आया, पोस्ट कार्ड आया, और उसमें उन्होंने लिखा कि सर माफ कीजिएगा कि मैं व्यस्तता के कारण आपके पत्र का जवाब नहीं दे सका। मित्रों आगे क्या लिखा था उसका कोई अर्थ नहीं है। मैंने पोस्ट कार्ड शब्द जानबूझकर यूज किया है, मतलब थोड़े से ही शब्द लिखे जा सकते हैं पोस्ट कार्ड में, कोई उन्होंने थीसिस लिख करके नहीं भेजी थी। अब आप देखें कि वो बेरोजगार है और मुझसे रोजगार में कुछ मदद करने की मांग कर रहा है कि मैं कुछ कर दूं, और इसके बावजूद उसने केवल 5-6 लाइन लिखने में 2 महीने लगा दिए, और इसलिए लगा दिए क्योंकि वो बहुत व्यस्त है। तो भैया अगर व्यस्त हो तो फिर बेरोजगारी का ये बहाना क्यों, बेरोजगारी का ये रोना क्यों। दोस्तों ये बस 2 उदाहरण मैंने आपके सामने दिए हैं, और ये जीवंत उदाहरण है, सच्चे उदाहरण है, और बहुत तीखे उदाहरण है। मैं उन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम सब की बात कर रहा हूं, क्योंकि उन दोनों में हम भी कहीं न कहीं सब शामिल हैं, या कह लीजिए कि हम सब में ये दोनों कहीं न कहीं शामिल हैं। एक बार फिर मेरा अनुरोध है मित्रों आप सबसे कि प्लीज, चाहे वो भागम दौड़ शब्द का आप इस्तेमाल करते हो या व्यस्तता शब्द का इस्तेमाल करते हो, उसको रिव्यू कीजिए। मुझे आपके प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी, और इसी के साथ ही मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। मित्रों नमस्कार।